ये अमेरिका और भारत के बीच की सामरिक और वाणिज्यिक बातचीत की बैठक के लिए बैठक हुई थी, दूसरे दौर की बैठक थी और काफी, अगर भारत के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी रही। जो मुख्य बातें निकल के आई वो ये कि एक बात स्पष्ट तौर पे कही गई कि अच्छा और खराब आतंकवादी नहीं होता, आतंक आतंक है और इससे निपटना है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि 26/11 के पीछे जिन लोगों का हाथ था और जो पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमले के तार जो पाकिस्तान से जुड़े हैं उस पर पाकिस्तान को करना चाहिए काम, और भारत का समर्थन किया कि इन केसेस को सुलझाने के लिए वो पाकिस्तान से बात करेगा। इसके अलावा लश्करे तैयबा और डी कंपनी के खिलाफ जो पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए उसकी मांग सुषमा स्वराज ने की और उसका समर्थन अमरीकी विदेश मंत्री की तरफ से भी हुआ। इसके अलावा जो मुख्य बातें कहीं वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी थी, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन से जुड़ी थी, पेरिस में जो समझौता हुआ था पर्यावरण को लेकर उस पर दोनों सहयोग करेंगे भारत और अमेरिका, जो हम लोगों का न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन था उसके तहत वेस्टिंग हाउस 6 रिएक्टर बनाएगा, उस पर बात आगे बढ़ी है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हैं उसमें भारत के प्रवेश का वो पूरा साथ देगा। आपको याद होगा कि चीन ने अड़ंगा लगाया था और वीटो कर दिया था, लेकिन भारत अमेरिका का कहना है कि अगली बैठक में वो और पुरजोर तरीके से भारत के सदस्यता की बात उठाएगा।
जी अच्छा रेनू, ये बताएं कि ये जो गतिविधियां हो रही है इससे जो भू राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है?
देखिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं। अगर आप, मैं ये कह रही थी कि भारत और अमेरिका का जो सहयोग बढ़ रहा है उससे दिक्कतें पैदा होंगी पाकिस्तान की, उससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं चीन की, क्योंकि साउथ चाइना सी पे भी चीन को जो धक्का लगा है उसमें भी अमेरिका और भारत ने फिर कहा है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा पालन करना चाहिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो चीन से ज्यादा करीब, वो अभी पनडुब्बियां खरीद रहा है चीन से। हालांकि आप भारत के विश्लेषकों से बात करें तो ये आप जरूर सुन पाएंगे कि एक तरफ भारत से सहयोग की बात होती है लेकिन F-16 बेचना भी जारी और एड भी जारी, तो अमेरिका जो है इस तरह की नीति अपनाता रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि विश्व स्तर पे चाहे वो ISIS का खतरा हो या आतंकवाद का खतरा हो उस पर एक तरह से सहयोग बढ़ा है और वो भारत के लिए अच्छा है, उसकी पोजिशन स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि अभी फिलहाल ये जमाना वो नहीं जब रूस इस हालत में है कि वो बहुत बड़ा एक स्ट्रांग फोर्स बने, तो भारत को भी डिसाइड करना ही है कि वो किस तरफ जाएगा। दूसरा सहयोग जिसपे, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, वो है कि अफगानिस्तान में शांति हो, और अमेरिका और भारत जो है अफगानिस्तान पर जो बातचीत कर रहे हैं वो भारत के लिए बहुत अहम है। देखिए लॉन्ग रन में ये किस तरह चलता है उस पे भी, और इस पे भी है कि अमेरिकी चुनाव में आगे क्या होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उससे बहुत चीजें बदलेंगी, लेकिन अगर हिलरी क्लिंटन बनती हैं तो शायद ये जो रिश्ते प्रगाढ़ करने की पूरी पहल है उससे भारत को मजबूती मिलेगी। और एक बात आपको ये देखनी है कि भारत को भी अपनी विदेश नीति को किसी ढांचे में न रख के इस बारे में सोचना है कि उसके फायदे की क्या बात है।
उल्लेखनीय है कि ये माना जाता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट की नीति रही है। तो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में इन गतिविधियों के चलते हमने अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत नरेश चंद्रा से इस विषय में बात की।
वो पॉलिसी जो है वो तो बरकरार रखेंगे, वो पॉलिसी बदलने का इरादा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि चाइना की पावर तो बढ़ी रही है, सब जानते हैं, इसकी वजह से कुछ बदलाव आएगा। ये बदलाव है इसको समझना और मानना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कैरी साहब का जो यहाँ विजिट था वो काफी सक्सेसफुल रहा है और एक तरह से वो दिशा दिखाता है कि भारत और USA के जो संबंध है वो किस दिशा पे जा रहे हैं।
वहीं हमने BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से ये पूछा कि भारत में विश्लेषक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी की इस यात्रा का आकलन किस तरह से कर रहे हैं।
देखिए जॉन केरी की जो यात्रा है भारत की, उसको ये बात शुरुआत से ही तय थी कि ये एक बेसिकली बिजनेस विजिट है और इस बात में कोई दोराय नहीं है कि तमाम स्ट्रेटेजिक मामले, सामरिक मामले इसमें डिस्कस होने थे, जिसमें एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस के इस्तेमाल पर समझौते से लेकर जो तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, हार्डवेयर होता है, उसके रिपेयर्स और रीसप्लाई पर बात होनी थी। लेकिन डेफिनेटली इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये एक बिजनेस विजिट ज्यादा थी, और जाहिर है कि भारत और अमेरिका दोनों इस बात पर स्ट्रेस करते रहे हैं कि वो अपने जो उनके बीच में बिजनेस है उसको कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ाएंगे, और इस बार दोबारा इस बात पर स्ट्रेस किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो कमर्शियल और बिजनेस एस्पेक्ट है उसके अलावा सुषमा स्वराज जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर है उनसे जो केरी की मुलाकात बहुत लंबी मुलाकात हुई है वो ज्यादा इस बार बहुत अहम बताई जा रही है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी से मिलने से ज्यादा इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर से बैठ के इस बारे में बात की है कि इन दोनों की स्ट्रेटेजिक जो सामरिक नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है, वो जरूरतें क्या है, और उसके उसके चलते जो जॉन केरी का बयान आया था बीच में मुलाकात के बाद कि दोनों ही मुल्क, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, वो अच्छे या बुरे चरमपंथियों में या टेररिस्टों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, कोई भेद नहीं करते, तो ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी और अहम बयान है जॉन केरी का। पल्लवी, ज्यादा जो विश्लेषक है वो बहुत बारीकी से इस बजट को अध्ययन करने के बाद उनकी ज्यादा जो फोकस थी वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स में जो भारत की एक कोशिश रही है पुरजोर पिछले कुछ दिनों में एंट्री लेने की, उस पर अमरीका की स्टैंड की थी। और हालांकि सुषमा स्वराज ने खुद ये कहा है कि उन्होंने अमरीका का शुक्रिया अदा किया है कि वो जो इंडिया के इरादे हैं और कोशिश है उसमें जाने में इंडिया की मदद करें, लेकिन अभी भी जो जो तमाम न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले मुद्दों पर उस पर बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। और जो एनालिस्ट हैं उनको ये लगता है कि अमेरिका ने भारत को प्रोमिसेस तो बहुत सारे किए हैं, और उसमें प्रॉमिस ये भी है कि वो हाईएस्ट लेवल पे इंडिया को सपोर्ट करेगा, और चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एविएशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे तमाम बड़े जी फोरम्स हो, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि अभी ऐसा कुछ खास बड़ा कुछ नहीं दिखा है, जैसा मनमोहन सिंह की रिजीम में जो न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ, उस तरह के लेवल की कोई बड़ी डील। तो अभी मुझे लगता है कि हालांकि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अपबीट है, एक दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पल्लवी जो जिसपे एनालिस्ट की नजर थी और अभी तक वैसा नहीं हुआ है, वो ये थी कि जॉन केरी इंडिया में आकर 2 दिन रहकर 2.5 दिन रहकर कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है।
भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिश्ते पहले से और ज्यादा नजदीक हो रहे हैं। ये बताइए कि क्या ये भी आकलन किया जा रहा है कि जो भारत का वर्चस्व है विश्व में, जो भारत की पोजिशन है, उसका उसके स्टैंडिंग की भी एक जो है एक इंडिकेशन मिलती है कि भारत आज कहाँ खड़ा हुआ है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है, और इसमें तमाम फैक्टर्स हैं। इसमें न सिर्फ वो 125 करोड़ की आबादी है जो भारत में है, लेकिन इसमें वो तमाम मार्केट्स हैं, वो तमाम पोटेंशियल है, इकोनॉमिक्स जाहिर है जिसको लीड करती है और जिसको फोकस करती है, जिसकी वजह से न सिर्फ अमरीका बल्कि जो यूरोपियन यूनियन है जो कि भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के तौर पर उभरा है, वो और जो तमाम लैटिन अमेरिकन मुल्क है उनकी नजर भी भारत पर है। और आप मतलब भारत की जो इमर्जिंग पावर है और जो इमर्जिंग से इकोनॉमिक माइट है, वो पिछले 2.5 साल में गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और एप्पल के सीईओ भारत आते हैं 3 से 4 महीने पर, और 5 महीने पर नई स्कीम्स का लॉन्च होता है। जाहिर है बड़ी सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट है आफ्टर चाइना से, आप अंदाजा लगाइए।